नमस्कार, मैं सौरभ डीएनए में आपका स्वागत करता हूं। हम अक्सर आपको बताते हैं कि देश में कुछ व्यक्ति और संस्थाएं ऐसी हैं जो विदेशी पैसा लेकर देश विरोधी घटनाओं में शामिल रहती हैं। कुछ संस्थाएं विदेशी राजनीतिक एजेंडे को भी देश में फैलाने का काम करती हैं। करीब दो वर्ष पहले ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यूज क्लिक नाम के एक न्यूज पोर्टल का पता लगाया था। जांच में ये पता चला था कि ये न्यूज पोर्टल चीन से पैसे लेकर उनका एजेंडा देश में चला रहा है। जांच में ये भी पता चला था कि इस न्यूज पोर्टल से जुड़े एक व्यक्ति का संबंध भीमा कोरेगांव हिंसा में भी था। उस वक्त देश के विपक्ष ने ईडी की कार्रवाई को तानाशाही बताया था, लेकिन आज एक अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आज हम इस खुलासे के बारे में आपको बताएंगे। उसके अलावा चीन और कांग्रेस के कनेक्शन पर बीजेपी के हमलावर तेवर की वजह भी बताएंगे। उसके बाद हम भाव खाते टमाटर का बेशकीमती डीएनए टेस्ट भी करेंगे। टमाटर की आसमान छूती कीमतों से आप जरूर परेशान होंगे और आपने इससे जुड़ी कई खबरें भी देखी होंगी, लेकिन आज हम डीएनए में टमाटर की बड़ी कीमतों के साथ टमाटर के बड़े प्रभाव का भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज टमाटर इतना पावरफुल हो चुका है कि उसकी वजह से आम भारतीय की थाली 35% तक महंगी हो चुकी है। यही नहीं, आज हम टमाटर की कीमत का पूरा गणित भी आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर मंडी में 80 रुपए तक बिकने वाला टमाटर आपके किचन तक पहुंचते पहुंचते 200 से 250 रुपए प्रति किलो कैसे हो जाता है। और इसके बाद हम जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या के केस में एक बड़ा खुलासा करेंगे। नितिन देसाई की आत्महत्या के बाद से कहा जा रहा था कि आर्थिक तंगी और कर्ज ना चुका पाने की वजह से उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आर्ट डायरेक्टर लोन के बोझ तले दबकर खुदकुशी कैसे कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक फाइनेंशियल कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर नितिन देसाई पर इतना प्रेशर डाला कि उन्हें मरने पर मजबूर होना पड़ा। जी न्यूज के पास उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें नितिन देसाई की पत्नी ने एडलवाइस कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज हम इस एफआईआर को डिकोड करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं डीएनए में खबरों के विश्लेषण की। डीएनए में आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों और संस्थाओं की जो देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए चीन से भी मदद लेने में कोई परेशानी नहीं रखते। हमने आपको दो वर्ष पहले अपने इसी शो में एक खबर दिखाई थी। इसमें हमने आपको बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ बड़े सबूत मिले थे। आर्थिक अपराध की जांच करने वाली संस्था ईडी को अपनी जांच में पता चला था कि न्यूज क्लिक के संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से है। चीन का प्रोपेगेंडा विंग अपना एजेंडा चलाने के लिए उन्हें फंड देता है। उस वक्त देश के कुछ बड़े एजेंडाधारी पत्रकारों, संस्थानों और विपक्ष में शामिल कई बड़ी पार्टियों ने इस जांच को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया था। उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने जानबूझकर न्यूज क्लिक जैसी संस्था पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज इन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। दरअसल आज अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन के प्रोपेगेंडा टूल किट का हिस्सा रहे संस्थानों पर एक लेख लिखा है। इसमें भारतीय न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक का नाम भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दुनिया भर के अलग अलग संस्थानों को पैसा देता है। इसमें कई देशों के मीडिया संस्थान भी हैं। इसी में से एक का नाम है न्यूज क्लिक। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इस आर्टिकल में भारत ही नहीं कई अन्य देशों का जिक्र भी किया है। इस लेख के मुताबिक चीन का प्रोपेगेंडा विंग अमेरिका, घाना और जाम्बिया के कई एनजीओज, ब्राजील और भारत के न्यूज पोर्टल, दक्षिण अफ्रीका की एक राजनीतिक पार्टी, दुनिया भर के थिंक टैंक्स और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देता है। ये लोग चीन के प्रोपेगेंडा के तहत उसका एजेंडा दुनिया भर में फैलाते हैं। मतलब ये है कि ये लोग पैसे लेकर चीन के बारे में दुनिया भर में सकारात्मक पॉजिटिव बातें कहते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत में चीन को लेकर सकारात्मक बातें करने और उसके राजनीतिक एजेंडे को फैलाने का जिम्मा न्यूज क्लिक को मिला हुआ था। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि न्यूज क्लिक को चीन का एजेंडा फैलाने के लिए पैसे मिलते कैसे थे। ईडी के मुताबिक न्यूज क्लिक को वर्ष 2018 से 2021 के बीच 38 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली थी। न्यूज क्लिक को ये पैसे चार बड़ी संस्थाओं की ओर से दिए गए थे। इनमें अमेरिका की जस्टिस एंड एजुकेशन फंड, जीएस पैन LLC, मैसेच्यूसेट्स का थिंक टैंक द ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन और ब्राजील की एक कंपनी सेंट्रो पॉपुलर डेमिडस शामिल थी। न्यूज क्लिक को किसने कितना पैसा दिया ये आप इस ग्राफिक से समझ सकते हैं। नेविल रॉय सिंघम के एनजीओ जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इनकॉर्पोरेशन ने 27 करोड़ 51 लाख रुपए और जीएस पैन LLC ने 26 लाख 98 हजार रुपए न्यूज क्लिक को दिए थे। थिंक टैंक द ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन ने न्यूज क्लिक को 49 लाख 31 हजार रुपए और सेंट्रो पॉपुलर डेमिडास ने 2 लाख 3 हजार रुपए न्यूज क्लिक को दिए थे। जिन संस्थाओं ने न्यूज क्लिक को पैसे दिए उनमें दो संस्था नेविल रॉय सिंघम की थी। ये वही व्यक्ति है जिसका संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा विंग से है। नेविल रॉय सिंघम वही व्यक्ति है जिसको पूरी दुनिया में चीन के लिए अच्छा माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। नेविल के जरिए ही अलग अलग देशों की संस्थाओं या व्यक्ति को पैसे देकर चीन के राजनीतिक एजेंडा को फैलाने का जिम्मा दिया जाता है। आज सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही।
हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ, ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं उन्होंने ही पुष्टि की है, पुष्टि उस बात की कि जो भारत ने दो साल पहले कह दिया था। फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से और एक झूठा प्रोपेगेंडा, ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए।
एक न्यूज पोर्टल को विदेशी फंड मिलना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस एजेंडे के तहत वो पैसा दिया गया और जिस तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ ये बहुत मायने रखता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि चीन ने न्यूज क्लिक को जो पैसा दिया वो एक ऐसे व्यक्ति को मिला जिसका नाम भीमा कोरेगांव हिंसा में शामिल है। न्यूज क्लिक को करीब 38 करोड़ रुपए मिले थे, इनमें से लगभग 20 लाख रुपए गौतम नवलखा को दिए गए थे। गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी है और फिलहाल वो नजरबंद किया गया है। गौतम नवलखा न्यूज क्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट पार्टनर भी रह चुके हैं। इसके अलावा लगभग 52 लाख रुपए वामपंथी पार्टी CPM के IT सेल मेंबर बापादित्य सिन्हा को दिए गए।
ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के मॉइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है उसमें अभी तक जेल में ये है, हाउस अंडर हाउस अरेस्ट है, यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। और यही नहीं, न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए, और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया, आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं। जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये चीनी गंध की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज क्लिक को, और चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में है।
यहां एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये कि न्यूज क्लिक कंपनी पहले पीपी न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड थी, लेकिन भीमा कोरेगांव हिंसा के 10 दिन बाद ही इस कंपनी को भंग कर दिया गया। इसके बाद पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई, और भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद ही इस कंपनी को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। सोचिए, कंपनी बनते ही इसे विदेशों से करोड़ों रुपए मिलने लगे। वर्ष 2021 में जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यूज क्लिक को मिल रही विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाए, ईडी का बहुत विरोध हुआ। यही नहीं, जब ईडी ने इस मामले में चीन के कनेक्शन की बात कही तो इसका भी काफी विरोध किया गया। अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने लेख में न सिर्फ न्यूज क्लिक को मिल रहे चाइनीज फंड की बात कही, बल्कि जिस व्यक्ति नेविल रॉय सिंघम की तरफ से पैसे मिले थे उसकी सच्चाई भी बताई। इस आर्टिकल में नेविल रॉय सिंघम के चीन के साथ संबंधों के बारे में भी बताया गया है। नेविल रॉय सिंघम चीन के शंघाई के एक ऑफिस में बैठते हैं। उसका दफ्तर और चीन की मीडिया कंपनी माकू ग्रुप का दफ्तर एक ही है। माकू ग्रुप की वेबसाइट के अनुसार उसका लक्ष्य पूरी दुनिया में चीन की कहानी बताना है। नेविल रॉय सिंघम एक ऐसा व्यक्ति है जो चीन के प्रोपोगंडा को पैसों की मदद से पूरी दुनिया में फैलाता है। वर्ष 2020 में नेविल रॉय सिंघम ने एक ईमेल से अपने दोस्तों को एक विशेष न्यूज़लेटर के बारे में बताया था। इस न्यूज़लेटर का नाम डोंग शांग न्यूज था। ये न्यूज़लेटर अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश और पुर्तगाली भाषा में चीन की खबरें प्रकाशित करता था। इस न्यूज़लेटर की ज्यादातर खबरें चीन की सरकारी मीडिया से ली जाती थी। नेविल रॉय सिंघम ने इसी ईमेल में अपने दोस्तों को बताया था कि डोंग शांग न्यूज चीन की सकारात्मक खबरें दिखाता है, ये आपको दूसरी मीडिया में नहीं मिलेंगी। यानी इस ईमेल से नेविल रॉय का एजेंडा साफ पता चलता है। अब सवाल ये है कि नेविल रॉय सिंघम के पास पैसा कहां से और कैसे आता था जिससे वो दुनिया भर के खास लोगों और संस्थाओं को पैसे दे पाता था। नेविल रॉय सिंघम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसका नाम था थॉटवर्क्स। वर्ष 2017 में थॉटवर्क्स को करीब 6,500 करोड़ रुपए में बेच दिया था। अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बेचने के बाद जो पैसे आए उसे नेविल रॉय सिंघम ने कुछ खास एनजीओ को दिए। इन एनजीओ में यूनाइटेड कम्युनिटी फंड, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड और पीपल्स सपोर्ट फाउंडेशन शामिल है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जस्टिस एंड एजुकेशन फंड ने न्यूज क्लिक को पैसे दिए थे। नेविल रॉय सिंघम ने इन एनजीओ की मदद से चीन के राजनीतिक एजेंडा को दुनिया भर में फैलाया। इन एनजीओ के माध्यम से ही चीन का पैसा दिया जाता था। अब सवाल ये है कि नेविल रॉय सिंघम चीन का राजनीतिक एजेंडा कैसे चलाता था। नेविल रॉय सिंघम के इशारे पर चीन का पैसा जिस भी संस्था को दिया गया उन्हें समाजवाद के नाम पर चीन के राजनीतिक विचार फैलाने का जिम्मा दिया गया। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में इसी वर्ष एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी।
मैं ध्यान रखता हूँ, मैं खड़गे जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मान्यवर, मैं खड़गे जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे सदन की उच्च परंपराओं का ध्यान दिलाया। मैंने सदन की परंपराओं का ध्यान रखते हुए सतलवे में मेरी बात कही थी, परंतु मान्यवर मैंने सतलवे में ही करी थी, मैसेज आधा अधूरा गया था, खड़गे जी ने पूरा मैसेज डाल दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर संजय राउत जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुक कर नमन करता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई मोदी जब बॉस कहता है, वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखे। माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख लेकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं। सुनिए, मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का, मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते कहता हूं, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकती है? हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? मान्यवर मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे, आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। और मान्यवर ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर, ठीक है भाई, चलो एक सेकंड के लिए मेरी बात मान लूं, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रशिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रशिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर ये मुझे क्या कह रहे, कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की? कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है? मान्यवर उनको ये ठीक नहीं लगता। मान्यवर चिदम्बरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं, दिल्ली में बीजेपी की दोनों बार सरकार नहीं हुई। भाई अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है, आपके तो ना संसद सदस्य है ना धारा सभा में कोई सदस्य है, हमारे कम से कम सातों सात संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोल ही नहीं पाए, यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे, बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे, ओडिशा में नहीं बोल पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ये सदन का हर सदस्य देश के झर्रे झर्रे के लिए सबके बोल, किस तरह से देश के गृहमंत्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? मान्यवर मैं सदन का सदस्य हूं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंता करने का मेरा अधिकार है और संविधान दत्त अधिकार। मान्यवर किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति के? मान्यवर मान्यवर मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, छिपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छिपाना है। और मैं कहता हूं माननीय 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे माननीय, नहीं सुन पाएंगे, और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए माननीय उनको मालूम है, उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं 11 तारीख को, एक सेकंड, सुन लिया, बैठिए। माननीय मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड बैठ जाओ 267 के तहत चाहते हैं जिसमें मतदान का प्रावधान है। माननीय ये प्रावधान क्यों बना है, जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो इसलिए रूल्स लाया गया है। यहां तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल बहुमते, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। माननीय मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी भी उसका दूध और पानी का पानी। माननीय 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। माननीय ऐसा है जयराम जी आपको भी मालूम है, अभी नहीं हो सकती, कल अविश्वास का प्रस्ताव है, आपको मालूम है। माननीय देश की जनता सुन ले, 8, 9 और 10 अविश्वास का प्रस्ताव है, इसलिए मुझे कह रही है कि आज 8, 9, 10 में चर्चा करिए। कांग्रेस पार्टी ही लाई है और मैंने सदन के पहले दिन से आपको पत्र लिखा है माननीय कि सदन में जितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, मैं हर बात का जवाब दूं, अरे मेरा संवैधानिक दायित्व। मगर जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती हो तब ये चाहते हैं मैं यहां बैठूं। माननीय इनके अविश्वास प्रस्ताव वही लेकर आए हैं, मगर इसकी संवैधानिक महत्व का मालूम नहीं है। जब अविश्वास का प्रस्ताव होता है मैं वो सदन का सदस्य हूं, मुझे वहां रहना पड़ता है माननीय, और 11 तारीख में क्या बुराई है 11 तारीख में क्या बुराई है? माननीय चर्चा से भाग रहे, ये चर्चा नहीं चाहते हैं माननीय, होने नहीं देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं माननीय कि चर्चा करनी नहीं है, और चर्चा करे तब बोलकर भाग जाना है। आज अच्छा है कम से कम एकता दिखाने के लिए वोटिंग करने के लिए बैठे हैं, चलो वो बहाने से भी बैठकर संविधान के नियमों के हिसाब से, संसद के नियमों के हिसाब से चर्चा करी, इसके लिए धन्यवाद। मेरा पूरा सदन से माननीय निवेदन है कि जो मैं विधेयक लेकर आए हूं इसको पारित किया।
आई शैल पुट
I shall first put the statutory resolution moved by Sri A.D. Singh to vote. Please. Honorable members, please. I shall now put. Please, Shanti. Sabhi, please. I shall first put the statutory resolution moved by Sri A.D. Singh to vote. The question is put. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the statutory resolution is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Trichu Siva for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Trichu Siva, Sri Abdul Wahab, Sri Derek O'Brien.
डीएनए में आज हम आपसे और आम आदमी से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं, लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम कुछ पंक्तियों से करेंगे। थाली खाली देख के सोच रहा इंसान, थाली खाली देख के सोच रहा इंसान, कहां गायब हो गए इनके सब पकवान, खा जाए महंगाई, है चिंतित इंसान, समस्या कैसी आई, महंगाई की मार ना जाए अब तो टाली, विपदा बड़ी विशाल, भरे न खाली थाली। महंगाई पर ये कविता हमें सोशल मीडिया से मिली है, लेकिन ये कविता आज के हालात पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, और हमें उम्मीद है कि अगर आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप भी इस कविता से खुद को जरूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सब्जी की दुकान पर आपकी जेब भले ही खाली हो जाए, लेकिन मजाल है कि आपका थैला पूरा भर जाए, और जब थैला ही आधा रह जाएगा तो फिर थाली कैसे पूरी होगी, थाली से भी कुछ ना कुछ जरूर गायब होगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी क्रिसिल का। दरअसल क्रिसिल ने भारत में महंगाई पर एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थालियों के दाम काफी बढ़ चुके हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वेज थाली 34% तक महंगी हुई है, जबकि नॉन वेज थाली के दाम भी 13% तक बढ़ चुके हैं। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस महंगाई की सबसे बड़ी वजह है आपकी थाली की रौनक बढ़ाने वाला टमाटर। वेज थाली के बड़े दामों में 25% हिस्सा तो सिर्फ टमाटर का है, क्योंकि सिर्फ जुलाई में ही टमाटर के दाम 233% तक बढ़ चुके हैं, और इसकी वजह से जुलाई में ही थाली के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं। इसी तरह प्याज और आलू के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, प्याज 16% और आलू 9% महंगा हुआ है। मसालों में मिर्च और जीरे के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। इस दौरान जहां मिर्च की कीमत 69% बढ़ी है, तो वहीं जीरा 16% तक महंगा हुआ है। नॉनवेज थाली में चिकन की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है, और चिकन की कीमत कुछ कम हुई है, इसीलिए नॉनवेज थाली पर महंगाई का असर थोड़ा कम पड़ा है। यानी इन दिनों टमाटर इतना पावरफुल है कि उसने अकेले दम पर ही पूरी थाली के भाव बढ़ा दिए हैं, लेकिन टमाटर के ये भाव आम लोगों को बहुत अखर रहे हैं, और अखरना भी चाहिए। लोगों और दुकानदारों का क्या क्या कहना है ये आपको जरूर सुनना चाहिए।
दो महीने हो गए बगैर टमाटर से खाते।
दो महीने हो गए। हाँ जी,
अब बगैर टमाटर से अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि टमाटर से अच्छा लगेगा।
मान लीजिए अब टमाटर के बिना खाने की
आदत पड़ गई।
महंगी है, बहुत महंगी।
कब लेके गए थे लास्ट टाइम?
हमारे को तो 1 महीना हो गया, हमने खाई नहीं टमाटर।
बनाने को नहीं मन हो रहा है अभी, जो भी कुछ बनाने का है तो पहले टमाटर रखो, तो वो मिलता नहीं है, इतना बजट तो नहीं जमता है।
टमाटर के बिना तो कोई भाजी बना नहीं सकती बिकॉज एल्डर्स आर विद मी एंड दे डोंट ईट विदाउट टमाटोज. इफ आई टेल देम टू पुट टमाटो प्यूरी बोलूंगी डाल के मैं बनाती तो बोलते नहीं हमें नहीं खाना नहीं खाना.
पहली बार शायद टमाटर की लाइन में लगे होंगे.
नहीं दूसरी बार.
दूसरी बार लग गए. इसके पहले कब लगे?
इससे पहले 4-5 दिन हो गए.
4-5 दिन मतलब अभी इस दौरान जो टमाटर महंगा हुआ है तो आपको लाइन में लगना पड़ गया.
बिल्कुल बिल्कुल.
जनता क्षुब्ध है इससे. बहुत काफी क्षुब्ध है. पेपर में ऐसा भी सुनने में आया है कि अगले महीने से प्याज का कीमत भी बढ़ने जा रहा है. तो परेशानी तो होगी जनता को.
लोगों का दुख तो आपने सुन लिया लेकिन अब हम आपको टमाटर के बड़े भाव की कहानी सुनाते हैं. 15 जून के आसपास टमाटर के दाम ज्यादातर जगहों पर 35 से 40 रुपए प्रति किलो थे लेकिन आज टमाटर का दाम ज्यादातर जगहों पर 200 से 250 रुपए किलो के आसपास है. यानी 1 से 2 महीने के अंदर ही टमाटर की कीमतें 5 से 6 गुना तक बढ़ गई है. रिसर्च करने वाली संस्था लोकल सर्कल्स ने भी टमाटर की कीमतों पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट के अनुसार बीते महीने यानी जुलाई में देश में हर 3 में से 1 व्यक्ति ने 1 किलो टमाटर के लिए 200 रुपए चुकाए जबकि 10% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 1 किलो टमाटर के लिए 250 रुपए खर्च किए. 23% लोगों को 1 किलो टमाटर 200 से 250 रुपए प्रति किलो के रेट पर मिला जबकि 17% लोग ऐसे थे जिन्होंने महंगाई की वजह से जुलाई में टमाटर खरीदा ही नहीं. लेकिन अब आपको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए. ये तस्वीरें अप्रैल और मई महीने की है जब टमाटर की सही कीमत नहीं मिलने पर किसान इतने परेशान थे कि उन्होंने अपनी पैदावार को सड़कों पर फेंक दिया. उस वक्त किसान को 1 किलो टमाटर के लिए सिर्फ 3 से 5 रुपए का भाव मिल रहा था लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में टमाटर की कीमत 170 से लेकर 250 रुपए किलो तक पहुंच गई. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर टमाटर के दाम अचानक इतने क्यों बढ़ गए. एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके कई कारण हैं. पहला तो ये कि अप्रैल और मई की शुरुआत में हुई बेमौसम बारिश से टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा जिसकी वजह से फसल खराब हुई. इसके अलावा कई राज्यों में भीषण गर्मी की वजह से टमाटर के उत्पादन में गिरावट आई. कई जगहों पर इस साल टमाटर की बुआई पिछले साल के मुकाबले कम की गई. महाराष्ट्र और गुजरात में भी टमाटर की काफी पैदावार होती है लेकिन बिपोरजॉय तूफान की वजह से दोनों ही राज्यों में टमाटर की खेती पर काफी बुरा असर पड़ा. यानी इस वक्त टमाटर की सप्लाई कम है जबकि डिमांड ज्यादा है और दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है.
मुझे लगता है परचेजिंग पावर अब बढ़ती जा रही है और उसके प्रोपोर्शन में जो एकरेज बढ़ना था वो नहीं हो रहा है. दूसरा एक टीओपी स्कीम चल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वो भी बंद कर दी गई है. नहीं तो उससे भी एकरेज एक्सपेंड कर रहा था और मार्केट लिंकेजेस बेटर हो रहे थे. और फिर मौसम का जो एक अनप्रिडिक्टिबिलिटी है प्लस वो सावन का महीना इससे कोइंसाइड करता है तो कुल मिला के डिमांड बढ़ी और एग्रीकल्चर में 5% डेफिसिट या 5% सरप्लस इसी का पूरा गेम है. 5% डेफिसिट होगा तो रेट 50 से 100% बढ़ेंगे और 5% सरप्लस होगा तो रेट 50 से 100% क्रैश करेंगे. ये वेजिटेबल्स में ज्यादा लगता है, मिल्क में कम लगता है, फ्रूट्स में कम लगता है और फूड ग्रेन्स में तो और भी कम लगता है. उसमें डिफरेंस जो है 1:2 का हो सकता है लेकिन इसमें 1:5 का डिफरेंस आता है.
चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा टमाटर भारत में ही पैदा होते हैं लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में टमाटर की कीमतें काबू में नहीं आ रही. लेकिन सवाल ये भी है कि आप अपने पड़ोस की दुकान में जो टमाटर 200 से 250 रुपए प्रति किलो की कीमत पर खरीद रहे हैं उसमें किसानों को क्या मिल रहा है. इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज जी मीडिया दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी पहुंचा और वहां हमने जो देखा वो आपको भी हैरान कर देगा क्योंकि किसान जिस टमाटर को मंडी में 70 से 80 रुपए किलो में बेच रहा है वो हमारे और आपके घर आते आते 200 रुपए किलो से भी ज्यादा का हो जाता है. और ये कौन सा गणित है ये समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए.
दो महीने हो गए बगैर टमाटर से खाते खाते.
दो महीने हो गए.
सही है तो सही टमाटर के बिना भाजी में टेस्ट नहीं है.
Thank you.
अल्टीमेटम दो डालना होता है, एक डालती है, यही सब कर रही हूँ, इस तरह से मैनेज कर रही हूँ।
राजधानी दिल्ली की मंडियां टमाटर से गुलजार हैं। ठेलों से लेकर आढ़तियों के दुकानों पर टमाटर ही टमाटर नजर आ रहा है, लेकिन खरीदार नदारद। लेकिन क्यों? इसका जवाब ढूंढने हम दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी पहुंचे।
देखिए, टमाटर महंगा है ये तो सर्वाधिक सत्य है। टमाटर इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा का भी विषय है, लेकिन कैसे किसान के खेत से टमाटर मंडी के रास्ते आपके घरों तक पहुंचते हुए 2 से 2.5 गुना महंगा हो जाता है, आज इस चीज की हम लोग तफ्तीश करते हैं दिल्ली की गाजीपुर मंडी से। अब यहाँ से हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे किसानों के खेत से निकला हुआ टमाटर जब आपके फ्रिज में पहुंचता है तो उसके दाम 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाते हैं।
दिल्ली की गाजीपुर मंडी में टमाटर के 25 किलो के कैरेट की कीमत 2,500 रुपए से 3,000 रुपए तक की है, यानी 80 से 120 रुपए प्रति किलो।
टमाटर की जो अच्छी बहुत अच्छी कैरेट है वो 2,500 रुपए बिक रही है, बाकी टमाटर 1,500 से लेकर 3,000 रुपए तक बिक रहे हैं। जो कर्नाटका का माल है वो 2,800-3,000 रुपए है, हिमाचल का माल है वो 2,500 रुपए तक है,
मतलब 100 रुपए से
अब 120 रुपए तक बिक रहे हैं।
यहाँ किसानों को आढ़तियों को 3% का कमीशन चुकाना होता है, इसके अलावा मंडी तक लाने का भाड़ा भी उन्हें देना होता है, यानी किसान को इस टमाटर के 67 रुपए से 110 रुपए तक का ही रेट मिल रहा है, यानी टमाटर की कीमत का एक बड़ा हिस्सा किसान की नहीं किसी और की जेब में जा रहा है।
अगर इसको देखें तो मतलब कितने का टमाटर पड़ा हमें?
अब ये किलो में यहाँ से तो पड़ता 100-120 रुपए किलो, वो बेचते 150-60। अब यहाँ से ले आते हैं, किराया भाड़ा खर्च करते हैं, 250-250 ग्राम तोलते हैं, उसमें कम होता है उनका माल, है ना, इसलिए वो थोड़ा महंगा बेचते हैं।
2000 वाला मतलब 80 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो
तक। दरअसल मंडी और बिचौलियों की लीला ही कुछ ऐसी है कि जो टमाटर मंडी में 80 से 120 रुपए प्रति किलो की थोक कीमत पर मिल रहा है, उसी की कीमत मंडी के भीतर लगे ठेलों पर 140 से 160 रुपए प्रति किलो हो जाता है।
150 का कौन सा?
छोटा वाला 140 का ये वाला, और ये बड़ा वाला 160 का, 150 का भी है
160। अच्छा, एक बात बता, लोग आ रहे हैं खरीदने, क्या हो रहा है?
खा आ रहे हैं, ये कम ले जा रहे हैं, जैसे एक ले जाना चाहिए 2 किलो तो ले जा रहे हैं 0.5 किलो, बस इतना हो रहा है।
कमी है, हम तो किसान से परसेंट काटते हैं।
अच्छा, परसेंटेज काटते हैं, कितना परसेंट मतलब कटता है आप लोग?
हम काटते हैं उनसे 3% और जो सामने से लेते हैं 40 रुपए के।
अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप लोग इसको 2,500 का बेच रहे हैं, 2,500 के हिसाब से अगर देखें तो मतलब
माल के ऊपर होता है सर।
हाँ
सर, माल के ऊपर होता है।
अच्छा,
माल की क्वालिटी कैसी है उस हिसाब से बिकता है,
2,500 से मतलब 3,500 तक।
जी,
तो मतलब ऐसे अगर देखें तो फिर 100 रुपए से तकरीबन मतलब 150 के बीच, मतलब 100 के 150 के
150 नीचे चाहिए।
जी,
अब आप सोच रहे होंगे कि टमाटर जब थोक में 80 से 120 रुपए किलो है और ठेले पर 140 से 150 रुपए प्रति किलो है, तो फिर आपको 200 या 250 रुपए प्रति किलो क्यों मिल रहा है? तो इसका जवाब हमें टमाटर खरीदने पहुंची चंचल से मिला। चंचल खुदरा सब्जी विक्रेता हैं। उन्होंने गाजीपुर मंडी से करीब 130 से 140 रुपए प्रति किलो में टमाटर खरीदा है, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर अपनी दुकान में वो इसे 200 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बेचेंगी।
टमाटर खरीद करके हम मार्केट में बेचते हैं, खोड़ा में बेचते हैं।
कितने में बेचती हैं, कितने में खरीद रही हैं?
ये अभी 750 रुपए धरी दे रहे हैं, 750 रुपए का 5 किलो मिलेगा। और घर जाएंगे तो वहाँ 200 रुपए किलो बेचते हैं, 50 का पाव बेचते हैं, वहाँ पाव से ज्यादा कोई लेते नहीं।
पाव से ज्यादा कोई नहीं लेते?
कोई नहीं लेते हैं, पाव पाव भर बिकता है।
मतलब 150 रुपए किलो?
कोई लेगा 100 ग्राम, कोई 20 के दे दो, कोई 10 के दे दो, कोई पाव दे दो, बस इससे आगे आज तक कोई आधी किलो तक नहीं।
मतलब यहाँ पर मंडी में 150 रुपए लेती हो आप लोग, फिर उसके बाद 200 रुपए किलो?
जरूरी नहीं है, 150 ही मिलेगा, 800 का भी धरी ले जाते हैं, 500 का भी धरी ले जाते हैं, 600 का भी धरी ले जाते, जैसा ले जाते वैसे।
सब्जी विक्रेता कुलदीप ने भी गाजीपुर मंडी से इसी कीमत पर टमाटर खरीदे हैं, लेकिन वो इसे 180 से 200 रुपए तक की कीमत पर बेचेंगे। कुलदीप के मुताबिक ये लागत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से हुई। हालांकि सच्चाई ये है कि जिस टमाटर को हिमाचल से दिल्ली लाने में करीब 5 से 6 रुपए प्रति किलो का खर्च आता है, वही टमाटर मंडी से 2 किलोमीटर दूर ले जाने में 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक बढ़ जाता है।
1 किलो पर कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता होगा आप लोगों को?
ये आगे भैया कम से कम 160 का पड़ जाता होगा। ऊपर से ग्रेवी भी निकल जाती है ना, देखिए ये एक क्रेट में 1.5 किलो खराब निकला है। ये आधे रेट में भी जाएगा, नहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। ये भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ जाता है। एक क्रेट में कम से कम 2-2.5 किलो खराब निकलना ही निकलना, चाहे कितना ही बढ़िया माल लो।
अब टमाटर महंगा हुआ तो लोगों ने टमाटर से दूरी बनाई। जो लोग कभी किलो के हिसाब से टमाटर खरीदते थे, उन्हें 100 ग्राम और 250 ग्राम टमाटर खरीदने में भी पसीने आ रहे हैं।
टमाटर लिया है 140 रुपए किलो।
140 रुपए
जी।
कितना ले रहे हैं? 1 किलो ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं?
बस 2 किलो लिया है।
अच्छा,
15 दिन के लिए हो गया।
ग्राहकों ने टमाटर से दूरी बनाई तो टमाटर की बिक्री भी गिर गई। जो दुकानदार 5 घंटे में ही 25 से 30 किलो की करीब 50 क्रेट बेच लेते थे, वो आज 7 क्रेट भी नहीं बेच पाते।
क्यों नहीं पड़ गया? कमाई नहीं हो रही।
वाले सोच रहा है, गरीब आदमी कहाँ खा रहा है? आधे 1 किलो पाव भर ले रहा
हूँ, बेच रहा हूँ सुबह से।
200 रुपए किलो का टमाटर बिक रहा है।
7 क्रेट टमाटर ला सुबह से बेच रहा हूँ, अभी तक बिका नहीं।
पहले बिक जाता था? पहले कितनी
मंदा था? 50 क्रेट।
अच्छा, और कहते कितनी जल्दी बिक जाता था? इतना का रेट आपका टमाटर?
50 क्रेट बिक जाते थे एक टाइम।
ग्राहक टमाटर की आसमान छूती कीमतों से परेशान है, जबकि दुकानदार का कहना है कि उसे मंडी से ही महंगा टमाटर मिल रहा है। आढ़ती का कहना है कि वो सिर्फ अपना कमीशन लेता है, कीमतों से उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो किसान तय करते हैं। जबकि किसान का कहना है कि उसके हिस्से तो आधी कीमत भी नहीं आ रही है और उसे तो उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है।
जी, इसमें टमाटर बहुत खराब होता है। अब हमें ये पता नहीं कि रेट क्या है क्या। अब हम मंडियों में भेजते हैं यहाँ से देहरादून, वहाँ रेट बोले लोग 3000 बिक रहा, कोई 2500 बिक रहा, पता नहीं जी। अब हमें तो यहाँ से दिया नीचे मंडी
में, तो जब देखो ना, इसमें इतनी कठिनाई है कि कहीं कहीं से पानी लाते हैं, तभी इसकी सिंचाई करते हैं, निलाई गुड़ाई दुनिया भर का झाड़ी चाहिए, हर बात चाहिए। अब जब वो देखते हैं तो हमारा कुछ नहीं बैठता, जिम्मेदार आदमी। दुकानदारों को होता है, जैसे मंडी वाले इनका होता है, हम वो बेच रहे हैं तो हमसे भी ले रहे हैं विक्रेता, और उनसे भी ले रहे हैं।
ऐसे में सवाल ये है कि जब किसी को फायदा ही नहीं हो रहा है तो फिर टमाटर 80 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 200 रुपए प्रति किलो कैसे हो जाता है? आप भी सोचिए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
जो कि सब्जी के विक्रेता बताते हैं कि कई बार टमाटर खराब निकल जाता है, कई बार टमाटर जिस समय तौला जाता है तो उस समय ज्यादा दिया जाता है, तो ये उसके कारण बताते हैं। तो ये इस समय स्थिति है पूरे टमाटर की और टमाटर की फिलॉसफी की। कैमरा पर्सन पवन के साथ शुभांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे जो टमाटर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड से निकलते वक्त 70-75 रुपए प्रति किलो होता है, लेकिन आपके किचन तक पहुंचते पहुंचते वो 200 से 250 रुपए प्रति किलो हो जाता है। और इसका गणित ये है कि जब किसान टमाटर लेकर आता है तो प्रति किलो करीब 6 से 7 रुपए भाड़ा लगता है, जबकि इसमें 3% आढ़ती का कमीशन भी जुड़ जाता है। और इस तरह मंडी में टमाटर की कीमत हो जाती है 80 से 90 रुपए। वहां से थोक में टमाटर खरीदने वाले इसे 100 से 120 प्रति किलो के रेट पर दुकानदारों को आगे बेच देते हैं। और जब ये दुकानदार आपके इलाके में इसे बेचता है तो वो अपना मुनाफा जोड़कर इसे 160 से 200 रुपए प्रति किलो या इससे भी ज्यादा कीमत पर बेचता है। जबकि ऑनलाइन स्टोर्स में भी टमाटर 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार टमाटर की कीमतों में आई बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह सप्लाई का कम होना है, क्योंकि अगर मार्केट में टमाटर की सप्लाई में 5% की भी कमी आती है तो इसकी कीमत 50% से 100% तक बढ़ जाती है। हालांकि सरकार जनता को राहत देने के लिए कई जगहों पर कम कीमत पर टमाटर बेच रही है और ऐसे सरकारी स्टॉल्स पर जनता की भारी भीड़ भी नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ इस कदम से महंगाई पर खास असर नहीं पड़ रहा, एक्सपर्ट्स के अनुसार इस समस्या से निजात पाने के लिए सप्लाई चेन को बेहतर करने के साथ कई और कदम भी उठाने होंगे।
अब बड़ा सवाल फ्यूचर के लिए दूसरा भी है, वो ये है कि ईयर आफ्टर ईयर सरकार जो है वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS जो चलाते हैं वो नहीं चला सकते, यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम कर सकते हैं लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं। तो करना क्या है, एक तो सीड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा टमाटर का, दूसरा TOP जो स्कीम थी टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो की उसको दोबारा लॉन्च करना चाहिए और थोड़े बढ़े हुए पैसे से लॉन्च करना चाहिए ज्यादा बजट से, तीसरा FPOs को कल्टीवेट करें और FPOs इंडस्ट्री पार्टनरशिप करें, और चौथा मुझे लगता है कि चूंकि इंडिया में IT सेक्टर बड़ा स्ट्रांग है तो IT के टूल्स को इस्तेमाल करके AI के टूल्स को इस्तेमाल करके कैसे ज्यादा बेहतर प्रेडिक्टिव सिस्टम पेश कर सकते हैं ताकि मार्केट का फोरकास्ट प्रोडक्शन से मैच करें एंड वाइस वर्सा। और पांचवा इसमें प्रोसेसिंग, जो ऑफ सीजन है अगर टोमेटो प्योरी एंड प्रोसेस टोमेटो बड़े पैमाने पर हो उसको इस वक्त मार्केट में ले आए तो जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है, गृहणियों के जो डिमांड है टमाटर काट के खाने की है लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट टमाटर की है अगर वो मीट आउट हो जाए प्रोसेस टमाटर से तो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये कुछ मेजर्स, और मुझे लगता है कि एक कोल्ड स्टोरेज, उसका कोल्ड चेन जो है जब परफेक्ट होगी तो वेस्टेजेस घट जाएंगे जिससे कंज्यूमर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी।
ये तो हुई टमाटर और टमाटर की वजह से महंगी हुई थाली की बात, लेकिन अब हम आपको इसी खबर की एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल टमाटर इतना महंगा हो चुका है कि अब इसकी चोरी और लूट की खबरें भी सामने आ रही और किसानों के लिए ये बड़ी चुनौती की बात है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में एक किसान ने तो अपने खेत में CCTV कैमरे लगवा दिए। किसान शरद लक्ष्मण राफ्टे ने 1.5 एकड़ जमीन पर टमाटर लगाए थे लेकिन जब टमाटर पककर तैयार हुए तो चोरों की नजर उन पर पड़ गई। रात में चोरों ने उनके खेत से कच्चे टमाटर तोड़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद मजबूरी में लक्ष्मण राफ्टे ने 20,000 से 22,000 रुपए खर्च कर पूरे खेत में CCTV कैमरे लगवाए ताकि वो अपनी फसल को चोरों से बचा सके। कर्ज के चलते किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आपने खूब सुनी और देखी होंगी, लेकिन कर्ज के बोझ में दबकर बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या ने हम सबको हैरान कर दिया। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर के लिए कर्ज चुकाना इतना मुश्किल कैसे हो गया कि उन्हें आत्महत्या करना आसान लगा। आज हम आपको बताएंगे कि आत्महत्या करने से पहले नितिन देसाई किस तरह रोज मर मरकर जी रहे थे और कैसे उन्हें कर्ज देने वाली फाइनेंस कंपनी एडलवाइस के अधिकारियों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने रायगढ़ जिले के खालापुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई। FIR में आरोप लगाया है कि एडलवाइस ग्रुप के अधिकारियों ने नितिन देसाई को लोन की वसूली करने के लिए बार बार मानसिक कष्ट पहुंचाया। नेहा देसाई ने शिकायत में कहा कि मानसिक कष्ट के कारण ही उनके पति नितिन देसाई ने आत्महत्या की। जी न्यूज के पास नितिन देसाई आत्महत्या केस में दर्ज इस FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें विस्तार से बताया गया कि नितिन देसाई ने किन परिस्थितियों के चलते आत्महत्या की और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। इस FIR में एडलवाइस ग्रुप के अधिकारियों समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहला नाम है एडलवाइस के चेयरमैन रशेश शाह, दूसरा नाम है एडलवाइस के अधिकारी स्मिथ शाह, तीसरा नाम है एडलवाइस से जुड़े केयूर मेहता, चौथा नाम है एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी EARC के अधिकारी RK बंसल, और पांचवा नाम है जितेंद्र कोठारी, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अधिकारी हैं। FIR के मुताबिक एडलवाइस फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारियों के बार बार पैसे मांगने की वजह से नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो इस सवाल का जवाब भी FIR में दिया गया है। ये FIR मराठी भाषा में लिखी गई है लेकिन DNA की टीम ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। FIR में नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने बयान दिया है। वर्ष 2016 में एडलवाइस ग्रुप के अधिकारी रशेश शाह ने खुद नितिन देसाई को प्रस्ताव दिया कि उनकी फाइनेंस कंपनी उनके स्टूडियो में निवेश करना चाहती है इसके बाद नितिन देसाई ने ECL फाइनेंस कंपनी से वर्ष 2016 में 150 करोड़ और फिर वर्ष 2018 में 35 करोड़ रुपए का लोन लिया। बदले में ND स्टूडियो की जमीन गिरवी रखी गई। FIR के मुताबिक अप्रैल 2019 में ECL फाइनेंस कंपनी ने नितिन देसाई पर 6 महीनों की अवधि के लिए लोन की किस्तों की प्री पेमेंट करने का दबाव डाला था, जबकि नितिन देसाई समय पर किस्तें चुका रहे थे। ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के दबाव में आकर नितिन देसाई ने हीरा नंदानी पवई में अपना एक कार्यालय बेच दिया और फरवरी 2020 तक इंटरेस्ट सहित लोन की सभी किस्तें चुका दी। नेहा देसाई के बयान के मुताबिक मार्च 2020 में कोरोना महामारी की वजह से लगे प्रतिबंधों के कारण फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग बंद हो गई और नितिन देसाई का स्टूडियो भी बंद हो गया। कोरोना महामारी के दौर में बिजनेस में रुकावट के कारण ECL फाइनेंस कंपनी से लिए गए लोन की किस्तें चुकाने में देरी होने लगी। नेहा देसाई के बयान के मुताबिक नितिन देसाई ने महामारी संकट के बावजूद ECL फाइनेंस कंपनी को लोन चुकाने की पूरी इच्छा दिखाई, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी स्मिथ शाह और केयूर मेहता हमेशा लोन की किस्त चुकाने का दबाव बनाते रहे। FIR में नेहा देसाई ने बताया कि नितिन देसाई ने ECL फाइनेंस कंपनी को वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी केयूर मेहता और स्मिथ शाह ने अचानक नितिन देसाई को नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। FIR में नेहा देसाई ने बताया है कि कैसे ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर उनके पति को प्रताड़ित करने का खेल खेला। नेहा देसाई के मुताबिक नितिन देसाई लोन चुकाने के लिए अपने स्टूडियो में निवेश के लिए नए निवेशकों को ला रहे थे, लेकिन उन्हें ECL फाइनेंस कंपनी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। नितिन देसाई इस बात से मानसिक दबाव में थे कि ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी उनके स्टूडियो को हड़पना चाहते थे। आरोप है कि नितिन देसाई लोन रीस्ट्रक्चरिंग और वन टाइम सेटलमेंट में से किसी एक के लिए तैयार थे, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ऐसा करने से बच रहे थे। ECL फाइनेंस कंपनी की इस नीति के कारण नितिन देसाई के बिजनेस प्रोजेक्ट बंद हो रहे थे और नए प्रोजेक्ट में भी दिक्कत आ रही थी, जिससे वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं सब चक्करों में फंसकर नितिन देसाई पर लोन की कुल बकाया रकम बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गई थी। इन सब कारणों से नितिन देसाई काफी तनाव में रहते थे। इसी 25 जुलाई को ECL फाइनेंस कंपनी की अपील पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने नितिन देसाई की कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद ND स्टूडियो के सील हो जाने का डर नितिन देसाई को सता रहा था और फिर 2 अगस्त को नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में आत्महत्या कर ली।
The purpose behind this statement is to put a stop or to request people to stop spreading false information and to bring the truth to light. The loan amount was 181 crores, out of which we made payments for 86.31 crores. Until February of 2020, all payments were made. They also demanded a 6 months interest in advance, which my father provided by selling his Bhavai office. He had no intention to fraud anyone, and he was going to make all the payments that he had promised. Due to the pandemic in 2020, the entire world came to a standstill, and the Bollywood industry was badly affected as well, because of which there was no work and the studio was closed. So he could not make his regular payments, and there were some delays. Even after that, he repeatedly made attempts to meet with the company, the lender company, to negotiate with them for a restructure or some help or a one-time payment or some leeway in the payment so he could still finish paying back what he owed. The company gave him false assurances but started legal matter and legal proceedings on the side.
DNA में अब वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी DNA में खबरों का विश्लेषण जारी रहेगा.
बिल्कुल दादा बड़े अच्छी बात बता रहे थे. सर मैं ये जानना चाहता हूँ 1947 में जब है सो मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद बोल के जब हुआ है 15 अगस्त को क्यों आप लोग खामोश थे. जब आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जितने भी बीजेपी के सीनियर लीडर है 1991 का जब एक्ट बन रहा था जब ये बात क्यों नहीं बताया कि
काशी उमा भारती ने भाषण दिया था सर मुझे याद है वो डिबेट सुनी है मैंने
यार पहले
भाषण भी दिया था और उन्होंने विरोध भी किया था.
देखो मैं आपको पूछ लिया पहले पूछ लिया मैं आप कैसे हैं उसके बाद मैं बात कर रहा हूं. देखिए अभी आप जो अभी मुद्दा उठाया अभी सीएम योगी साहब का सीएम योगी साहब से सबके क्या ताल्लुक है. कोई ताल्लुक नहीं. अभी एक और एक नाम लिए देवेंद्र शास्त्री का उससे इसका क्या ताल्लुक है. आप हिंदुस्तान के आज के हालात मैं आपको आगाह करना चाहता हूं आपके चैनल के
ज्ञानवादी से ओबीसी जी का क्या ताल्लुक है.
हरियाणा पहले सुनिए
बताइए ना आप योगी जी का पूछ रहे धीरेन्द्र शास्त्री का पूछ रहे तो मुझे बता दीजिए ओबीसी जी का क्या है ज्ञान
अवेसी का अवेसी का नाम अवेसी का मैं नाम लिया. आप इतनी मोहब्बत करते हैं इस हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है. और दूसरी चीज जिस जो हालत में बताइए
मैं आपको बता दो ये जो एसआईटी टीम 41 लोगों की जो सर्वे करके बाहर निकल रही है ये जो लाइव तस्वीर राजीव साहब एक मिनट के लिए रुक जाइए ये लाइव तस्वीर है ये आप ज्ञानवापी से देख रहे हैं और ज्ञानवापी से अब एसआई की टीम जो है वो सर्वे करके चौथे दिन का सर्वे करके बाहर निकल रही है और ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं सीधे काशी से. बताइए राजीव साहब
मेरे को सर्वे में वो चीज होना जो शंकर जी पैदा हुए उनका झूला होना उनका सामान होना उनका महल होना. ये बच्चे जो त्रिशूल लगा लिए ये बच्चे जो फाउंटेन लगा लिए वो नहीं चाहिए मेरे को. मेरे को चाहिए उस वक्त उनका महल था होगा जहां पैदा हुए होंगे जो कमरा होगा जैसा बाबरी मस्जिद में हुआ महाराणा प्रताप जो महाराणा जो राम जी के पिता थे दशरथ जी उनका महल था वो कमरा था वो सब निकलना चाहिए था. वैसा कुछ नहीं निकला इसमें निकलना चाहिए यहन वापी में बराबर ये नहीं निकलना चाहिए. ये त्रिशूल है ये दीवाल है ये बाहर की दीवाल है अंदर की वो नहीं चाहिए. हम कुछ चाहिए उन्हों जो पैदा हुए उनका जो घर जमीन के
अहमद साहब आपसे शुरुआत करूं. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि इसको मस्जिद कहना बंद करें या ये मस्जिद नहीं है ये मंदिर है. आपको क्या आपका क्या मानना है नूर साहब.
जब देश में संविधान है जब देश में कानून है जब देश में अदालतें हैं तो आखिर मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं ये बात कहने वाले. जिन जिन बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने लॉन्च किया है वो बाबा ये बात कहने वाले कौन होते हैं के वो मंदिर है मस्जिद नहीं है. जब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में फैसला हो रहा है तो इस तरह की अनर्गल बातें क्यों हो रही हैं. आखिर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि विवाद हो सकता है किसको वो धमकी देना चाह रहे थे. ये सब ठीक नहीं है देश के लिए. देश की आबियारी देश का वकार देश की इज्जत इसी में है कि जब हमने एक मामला अदालत पर छोड़ रखा है तो हमें अदालत पर यकीन करना चाहिए. वैसे बर्शिप एक्ट जैसा 1991 एक्ट पूरा अपने अंदर निकलने की कोशिश की जा रही है. ये क्या है आखिर मुसलमानों को डराने की कोशिश क्यों की जा रही है. ये देश में
आप डरे हुए हैं क्या नूर साहब.
तारीख में हो रहा है
आप डरे हुए हैं.
अच्छा नहीं है देश के लिए. हम कभी डरने वाले नहीं है. हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं वो कौम डरने वाली नहीं है. लेकिन ये लोग जो कोशिशें कर रहे हैं बक खराब कर रहे हैं देश में नफरतें बांट रहे हैं इन्हें सुधर जाना चाहिए कायदे में. ये बात ठीक नहीं है.
ठीक है रसीद है प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हो. प्रेम शुक्ला जी ठीक नहीं कर रहे हैं आप. मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं जी. और मैं बम बम बोलने से शुरुआत कर दूंगा. सावन का सोमवार है और आपने भी वस्त्र धारण कर रखे हैं बिल्कुल.
मैं बम बम बोले विश्वेश्वर महादेव की जय.
देखिए ये एक तरफ किस तरह से जो है दोहरी बातें करते हैं नूर अहमद अजहरी साहब, कितना जहर भर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि विवादास्पद है, उसको मस्जिद ना कहने का अधिकार जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कैसे है। दूसरी तरफ कहते हैं मुकदमा है, जब मुकदमा है तो उसको मस्जिद कैसे कह सकते, यही तो बात कर रहे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यही बात कर रहे हैं कि एक विवादित ढांचा है। अभी यह विवाद स्पष्ट होना शेष है कि वह जो है जिस जो आप विवादित ढांचा है वह मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया कि नहीं बनाया गया, कोर्ट में ही मुकदमा चल रहा है,
चाहे आप
सर्वेक्षण करने के लिए बीच में
आप ऐसी बाबरी मस्जिद।
सिर्फ नितिन देसाई का परिवार ही एडलवाइस कंपनी पर आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं है। खुद नितिन देसाई ने भी आत्महत्या करने से पहले वॉइस मैसेज में अपनी आत्महत्या की वजह और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बयान छोड़ा है। पुलिस को नितिन देसाई के कुल 11 ऑडियो मैसेजेस भी मिले हैं, जिसमें से एक में उन्होंने कहा है कि रशेश शाह एक मूर्ख है और उसने छोटे और बड़े बिजनेसमैन के लिए कड़ी मेहनत से बनाए गए मेरे स्टूडियो को निगल लिया। मैंने उसे 100 बार फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एनसीएलटी के जरिए बहुत परेशान किया। मेरे पास 2-3 निवेशक निवेश करने के लिए तैयार थे लेकिन उसने सहयोग नहीं किया। मुझ पर दोगुनी कीमत का बोझ डालकर दबाव में डाला गया। मुझ पर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक अलग तरीके से दबाव डाला गया। नितिन देसाई ने एक और ऑडियो मैसेज में कहा था कि स्मिथ शाह, केयूर मेहता और आर के बंसल मेरे स्टूडियो को लूटने, मुझे बदनाम कर घेरने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया, रुपए के लिए धमकी देकर दबाव डाला, मेरा सोने जैसा ऑफिस बिकवाया, साजिश कर दबाव डालकर मुझे बर्बाद किया, मेरी इच्छा ना होते हुए भी मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। नितिन देसाई के आखिरी ऑडियो मैसेजेस अब इस केस में अहम सबूत बन चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि एडलवाइस कंपनी के अधिकारियों ने साजिश रचकर नितिन देसाई को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। अब पुलिस एफआईआर में आरोपी 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, लेकिन एडलवाइस के मैनेजमेंट को अभी भी लगता है कि उसके अधिकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। एडलवाइस ने जी न्यूज को ईमेल पर अपना जो जवाब भेजा है उसमें कंपनी ने दावा किया है कि एडलवाइस आर्क ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। कंपनी के मुताबिक नितिन देसाई से ना तो ब्याज दर बहुत अधिक ली गई थी और न ही वसूली के लिए उन पर कोई दबाव डाला गया था। कंपनी ने कहा है कि पैसे वसूलने में पूरे नियम और कायदे का पालन किया गया है। अब एडलवाइस की तरफ से चाहे जो भी सफाई आए, लेकिन इससे सच तो नहीं बदल जाएगा कि उसके अधिकारियों की तरफ से मिल रही प्रताड़नाओं की वजह से नितिन देसाई को अपनी जान गंवानी पड़ी। सोचने वाली बात तो वैसे ये भी है कि जब इतना बड़ा और नामी आर्ट डायरेक्टर फाइनेंस कंपनी के जाल में फंसकर खुदकुशी कर सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा।
मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि जहां कोई प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज्ड बैंक हो, जब लोन दिया जाता है उसी वक्त इतने डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत लिए जाते हैं और जो बोरर रहता है वो बोरर हर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करता है, जैसे बैंक ऑफिशियल बोलते हैं और प्राइवेट जो फंडिंग करता है वो बोलता है। कई बार तो ऐसा है कि लिमिटेशन का तो 3 साल का है, इन एडवांस टाइम बार न होने के कारण, लोन टाइम बार न होने के कारण इन एडवांस एक्नॉलेजमेंट रिवाइवल लेटर्स पे भी सिग्नेचर लिए जाते हैं। और लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन अगर वो इन टाइम नहीं रिपे किया गया तो उस पे जो ब्याज चढ़ता है वो ब्याज बहुत भारी पड़ता है। सिर्फ भारी नहीं तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह से पिनल फाइन, इतने अलग अलग फाइन लगाए जाते हैं कि जिससे जो लोन देता है वो बहुत मुश्किल में आ जाता है, उसका सोशल प्रेस्टीज खत्म हो जाता है,
और उसी हालत में अगर उसका मेंटल बैलेंस खो बैठा तो हमने देखा है कि नितिन देसाई जी की क्या हालत हो। एक बड़ा मराठी शानदार एक कलाकार डायरेक्टर थे और जो लोन लिया था उससे कई दुगना लोन रिपे न करने के कारण उसे उन्होंने उनको जान देनी पड़ी क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा गया।
नितिन देसाई जैसे बड़े आर्ट डायरेक्टर को कर्ज के जाल में फंसकर अपनी जान गंवानी पड़ गई तो वसूली गैंग बन चुकी लोन प्रोवाइडर कंपनीज का चाल चरित्र चर्चा में आ गया। वरना सच तो ये है कि हमारे देश में रोजाना कई लोग ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज का शिकार होते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों की ही बात करें तो कर्ज से तंग आकर हर साल हजारों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वर्ष 2020 में 5213 लोग ऐसे थे जिन्होंने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की थी। इस हिसाब से हर दिन औसतन 15 लोगों ने आत्महत्या की। 2019 में भी 5908 लोगों ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी की थी। और कर्ज के इस जाल में समाज का सिर्फ गरीब फंसकर जान गंवा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। यहां आपको ये जानना भी जरूरी है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के अधिकारी या रिकवरी एजेंट लोन की किस्त ना चुका पाने पर आपको डरा या धमका नहीं सकते। और लोन रिकवरी एजेंट्स को लेकर RBI की गाइडलाइंस भी है जिसके मुताबिक लोन रिकवरिंग के लिए बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर ग्राहक को वर्किंग डेज में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल या घर आ सकता है। लोन की रकम की वसूली के लिए सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ग्राहकों को रिकवरी एजेंट या एजेंसी के बारे में जानकारी देगी। रिकवरी एजेंट ग्राहक से संपर्क करते समय बैंक के नोटिस की कॉपी को साथ रखना होगा। लेकिन अक्सर बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज ग्राहकों को प्रताड़ित करती है और नियमों के खिलाफ जाकर ग्राहकों को परेशान करती है। अगर आप भी किसी कर्ज के जाल में फंसे हैं और बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के वसूली गैंग आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1-800-11-4000 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अब DNA में वक्त है पॉजिटिव न्यूज का और ये न्यूज है चंद्रयान 3 से जुड़ी जो अपने मिशन की तरफ कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चांद का एक वीडियो बनाकर भेजा है जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो इसरो ने जारी किया है। 45 सेकंड के इस वीडियो में चांद की सतह पर हल्के नीले हरे रंग के कई गड्ढे नजर आ रहे हैं। चंद्रयान 3 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई चंद्रमा की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है और इस बात का सबूत है कि इसरो का मिशन मून इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अब आज का प्रेरक विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे जुड़ी नई खबरों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।